ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الأموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. And never think that those who have been killed in the way of Allah as dead, they are alive, they have achieved martyrdom, and they receive sustenance by the means of their Lord. Surah Al-Imran mein khud Allah hi farmata hai ki jo log khuda ki raah mein mare jaye unko murda mat samajhna, wo zinda hai aur apne khuda ki taraf se rizq paate hai. To hum us khuda ke maanne wale, hamari zabanon pe aaj yahi nara hai, hamari zabanon pe aaj yahi nara hai. We believe in the truth of the words that Allah says. That is why we say also ki shaheed zinda hai, shaheed zinda hai. And this is not just a metaphorical statement that we say, okay, shaheed zinda hai, every single martyr is alive. This is not just simply a metaphorical statement. If we just think about it for one second, when the bombings of Quetta happened, our brothers and sisters in Quetta, they sat underneath the open sky with the bodies of the shuhada for several days. When a person is killed, when someone dies, in a few days, in 2 days, in 1 day, their flesh starts rotting away. And you can start smelling the flesh rotting away. But these shahada, they were underneath the open sky for 4 days, and not once did we hear. हमारे सुनने में ये कभी भी नहीं आया कि उनके नाशों से ताफुन पैदा हो रहा है. तो ये इसकी दलील है. This is proof. This is physical evidence that shaheed, that shahada are alive. And that is the nara that we have on our tongues today. We receive this jazba, we receive this zindagi, we receive this life. Because we are the lovers of Imam Ali. We are from the people, we are from the lovers. Hum un Ali ke chahne walon mein se hain. Ki jinko jab kaha gaya, Hazrat Misa mein tamar, unko jab kaha gaya ki tum, you need to slander Ali. Hazrat Misa bin Tamar said, no, I will not. And they said to him, if you do not slander Imam Ali, if you do not say, if you do not insult Imam Ali, we will cut your tongue off and we will kill you. And Hazrat Misa bin Tamar looked them straight in the eye and said, Tum mujhe maut se darate ho? You are making me afraid of death? Hazrat Misa bin Tamar, Hazrat Hajar ibn Adi, all of these people, ye wo shakhsiyate hain, these are the people that show us that even till the point we die, up until that point, they show us, ye hame dikhate hain ki Ali ke chahne walon ke dilon mein kitni shujaat hai, kitne jazbaat hai, unke khoon mein kitni hararat hai. They show us that, and we have to take their message and we have to apply it to our life. The flame of the love of Ahl al-Bayt can never be severed with the khanjar and can never be extinguished with bullets. A poet so beautifully said that churi ki dhar se karti nahi charah ki law, churi ki dhar se karti nahi charah ki law, aur badan ki maut se kirdaar mar nahi sakta. To maro hame jitna marna hai, hamare sar se sitamgar to sar utarega, magar Ali ki mohabbat ko kaun marega? Hamare sar se sitamgar to sar utarega, magar Ali ki mohabbat ko kaun marega? Zaban-e-Misa mein tamar ka ye nara hai, shaheed zinda hai, shaheed zinda hai. Bashar ki baat nahi, this is not the statement of a human being. Bashar ki baat nahi, khud khuda Al-Imran mein kehta hai ki shaheed zinda hai. Bashar ki baat nahi, ye khuda ka dawa hai, shaheed zinda hai, shaheed zinda hai. Momineen aur mominat, to aaj hum sab shana bashana, dil ba dil, kam qadam ba qadam yahan pe khade hain, apna deen bachane, apni awaazein uthane. और ये कहने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि वो जो ज़ईफ़, वो जो बुजुर्ग, वो जवान, वो बच्चे जो मारे गए हैं, उनका खून रायगा नहीं जाएगा. वो मासूम बच्चे जिनको मौत की नींद सुला दिया गया. शायर ने दिल हिला देने वाला जुमला कहा है कि अजब क्या है जो नौ खैजों ने सबसे बढ़ के जाने दी. ये बच्चे हैं कि जिनको जल्द सो जाने की आदत है. लेकिन कितने खुश नसीब हैं वो माँ बाप के जिन्होंने अपने फर्जन अपनी औलाद खुदा की राह में दे दी. हमारा सलाम हो उन दिलों पर और हमारा सलाम हो उन हौसलों पर. 3 or 4 days ago, we heard the news of a shaheed, of Danish Zaidi. He was 23 years old. He was at the forefront of every julus. He was at the forefront of every protest, of every dharna. He went to every single janaza. And he was coming home at night at 2 a.m. in the morning. After he came inside his house, someone called him and said that your friend Ali, his best friend's name was Ali. And they said, your friend Ali is calling you because someone has been killed. Someone has been targeted, someone has died. तो वो जज्बात में जब वो नीचे गया तो वहीं पे जीने के ऊपर सीढ़ियों के ऊपर उसको खत्म कर दिया. And I am not saying this story. I am not telling you these waqia only so that we can shed a few tears and move on with our life just like we used to. Every shahada, every shaheed has a message, and not just the shaheed, even the family of these shahada has a message for us. Danish Zaidi ki jo walida thi, at his janaza, she addressed everyone and she said, "Tum log gawah rehna ki mera beta shaheed hua." She did not let the grief overtake her. She held her head up high. She gathered the strength. She gathered the courage, and she did not let her son die for no purpose. बहुत अजीम हैं वो खानवादाए शहदा कि उनको रब की तरफ से मिला है ये रुतबा. वो वालिदैन बहुत खुश नसीब हैं लोगों हुसैन के लिए जिनका है मर गया बेटा. खुदा की रहमतें बढ़कर बनाए लेती हैं. अकीदतें तुम्हें हर दम सदाएं देती हैं. तुम्हारा जैसा नहीं कोई इस जमाने में. तुम्हें हुसैन की मादर दुआएं देती हैं. एंड दिस एग्जैक्ट रीजन इज व्हाई दिस ज़ालिम दिस नईम दिस दुश्मन आर अफ्रेड ऑफ अस. इफ समवन इज वायलेंटली किल्ड देयर फैमिली मेंबर्स वीप. उनके घर वाले रोते हैं क्रिया करते हैं. लेकिन इसी वजह से ये ज़ालिम इतना घबराते हैं कि हमारी माए हमारे भाई हमारी बहनें अपने बच्चों को माथे के ऊपर डब्बे क्या हुसैन की खूनी पट्टी बांध के बहुत ही शुजात के साथ बहुत ही जलालत के साथ अपने बच्चों को जुलूसों में मजलिसों में भेजती हैं. हालांकि उनको ये पता है कि शायद आज मेरा बेटा मेरे पास वापस लौट के नहीं आएगा. So this is why the dushman, this is why the zalim are so afraid, because they have never seen anything like our jazba. They have never seen anything like it. That is why they are so afraid. In truth, all of us, hum sab shuhada ke lahaiqeen hain. We are all the family of the shuhada. Every person raising their voice, every single person present here today, every single person that goes to the protest and holds a flag of Labbaik Ya Hussein or says Labbaik Ya Hussein, every single person that does that, every time we say that, we're saying that we support you. We will not let your message go to waste. Anytime someone goes to great lengths to achieve a respected degree like a PhD, every time they do this, after facing many obstacles, after facing many struggles, they earn the title doctor in front of their name. And they deserve this title. They deserve it because they have earned it. So I was looking at the slideshow, and in front of every shahada's name, we put a title there. We put shaheed. We don't say Askari Raza, we say Shaheed Askari Raza. And the reason being is because they have earned this title. Apna khoon deke, apni jaane rahe khuda mein pesh karke, in shahada ne ye sabit kar diya ki hum shahadat ke layak hain. So shahadat is a khush naseebi, it is a fortune. And every single moment of every single day that we should do dua that, oh Allah, ya to hum shaheed ho jayein, ya jab hum mare, तो हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत कायम और दायम रहे. एवरी मोमेंट ऑफ एवरी डे वी शुड डू दिस दुआ. सो एवरी सिंगल टाइम वी हियर देयर नेम वी ऑलवेज से शहीद अस्करी रजा, शहीद तासीर अब्बास, शहीद अब्बास हैदर. द लिस्ट इज एंडलेस. شهيد كاشف منزور، شهيد سيد وقار رضا، شهيد حبيب غلام علي، شهيد فدا حسين، شهيد فدا حسين. If we just concentrate on his name, شهيد فدا حسين. یہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے شہید ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے نام کا بھرم رکھا اور حسین کے اوپر فدا ہو گئے. ان شہیدوں کا رتبہ اتنا عظیم ہے کہ شہداء کربلا کی مانند یہ یقیناً اپنا مقام سر نگاہ رکھ کے اس دنیا سے جاتے ہیں. And they leave this valuable gem of Islam entrusted to us in the bloody coffin. فطرت انسانیت یہ ہے. It is human nature that we cry tears every time we hear of a jawan dying, or every time we hear a news of someone dying, or someone being killed, someone being martyred, someone being shaheed, we let out these tears. Because it's human nature, ye fitrat e insaniyat hai. Lekin iske saath saath musafiran e karbala ne humko ye sikhaya, Bibi Zainab, the sister of Imam Hussain, what did she teach us? She taught us ki hum apne آنسو بے شک ہم لوگ آنسو بہائیں لیکن یہ آنسو رومال زہرا میں سپرد کر کے حسینی پیغام سناتے جائیں کیونکہ یہ پیغام ہر گھر میں ہر دروازے پہ ہر گلی میں پہنچنا چاہیے. And in this process we know that we might be killed لیکن اگر ہم شہید ہو بھی جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. او مائی فیلو حسینی, ہم آشار میں ہمیشہ سنتے ہیں کہ اے کاش, oh I wish, اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. Oh I wish, how I wish to be that I was in the battlefield of Karbala. So this is our opportunity to travel to the battlefield of Karbala. یہ وہی وقت آ گیا کہ جس کے لیے ہمارے امام حسین نے مرتے. They will kill us and we will fall, but the alam will not fall to the ground. And we will hand it over to the person picking up our body, and they will pass it on as well. جو مرتے دم شہدا نے پڑا بے شک یہ حسینی ترانہ ہے. یہ ایک حقیقت ہے لوگو, تم مت ہی سمجھنا فسانہ ہے. جو کربلا میں ظلم ہوا دنیا کو یہی تو بتانا ہے. ہر گام پہ ظالم چہروں کو ہر سمت ہمیں دکھلانا ہے. وہ جتنا بھی چاہیں ظلم کریں, وہ جتنا بھی چاہیں ظلم کرے, وہ چاہے جہاں ہم کو مارے, وہ کتنے حسینی ماریں گے ہر گھر سے حسینی نکلے گا. وہ کتنے حسینی ماریں گے, ہم سب لوگ حسینی ہیں. وہ کتنے حسینی ماریں گے, یہ ساری قوم حسینی ہے.
جو تم کو غرق کر دے وہ نیل ہیں ہم. اے ابرہا کی فوج کے بدمست ہاتھیوں, اے ابرہا کی فوج کے بدمست ہاتھیوں, انجام سوچ لو کہ ہم عوابیل بھی ہیں. سن 2009 کے یوم عاشورہ کا جو دھماکہ ہوا, اس کے بعد تمام ممبروں سے اور تمام مساجد سے اعلان کیا گیا کہ آنے والے چہروں کے جلوس میں ہر مرد مومن, ہر مومنہ کفن پہن کر اس جلوس میں شامل ہو, اور جس کے گواہ آپ لوگ بھی ہیں کہ کفن پوش لوگوں نے نماز ظہرین ادا کی. لیکن اسی میں ہی, اسی جلوس میں کچھ لوگ جو کفن پہن کر آئے تھے, غالباً اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائے سے پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کفن میں اپنے پاس بلا لیا. ایک پوری بس جو اس جلوس میں شرکت کے لیے آ رہی تھی اس میں دھماکہ ہوا اور کئی جانیں شہید ہوئیں. انہی کے عزیز ہمارے درمیان موجود ہیں. میں جناب محمد عابد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر پہلے اپنے ان اقربا کا تذکرہ کریں اور پھر منظوم خراج تحسین شہداء اسلام شہداء ملت جعفریہ کو پیش کریں. بابا سے بلند صلوات.
آج ہماری آنکھیں نم ہیں, ہمارا دل سوگوار ہے ان شہیدوں کے لیے कि जिन्होंने राह हुसैन पर चलते हुए जामी शहादत हासिल की। सन 210 में चहलुम के जुलूस में मलीर हुसैनाबाद और हुसैनी सफारत खाने से हमारे ख़ानदान की अंजुमन हुसैनी अज़ादार तंजीम इस बस में जुलूस में जाने के लिए तैयार थे। बस में ये लोग कफन पोश, सर पे कफन बांधे हुए, लब्बैक या हुसैन की पट्टी लगाए हुए,
लब्बैक या हुसैन,
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 जुलूस के लिए शामिल होने के लिए जा रहे थे कि शाहराह फैसल पर यह वाकया नमूदार हुआ और उन यजीदी सिफात नादहिंदा लोगों ने बम का धमाका किया इस बस पर और इसमें मेरे ख़ानदान के 14 अफराद शहीद हुए। ये मेरे ख़ानदान के शहीद नहीं, ये आप सबके शहीद हैं, ये हुसैनियत के शहीद हैं। चचा ज़मीर बड़े अच्छे सोसपान थे, इनके घर से चचा ज़मीर, इनका बेटा, इनका पोता, तीन नस्लें गई हैं। सज्जाद बाबा के घर से तीन बेटे और उनके बेटों के बेटे गए हैं, लेकिन ये जज्बा था। मेरी अशफाक भाई से बात हो रही थी और मैंने पूछा कि आप लोगों ने क्या महसूस किया। कहने आबिद, हम फख्र से बहुत बुलंद हो गए, हमारा मकाम बहुत बुलंद हो गया, हम शहीद के वर्सा में से हो गए, हम बहुत बुलंद हो गए, हम बहुत बुलंद हो गए, हम शहीद के वर्सा में से हो गए। मेरे जज्बात और मैं क्या बयान करूं। मैं एक मंजूम खराज तहसीन शोदा के हवाले से पेश करना चाहता हूं। एक बावाज बुलंद सर बात पढ़ दीजिए। और इसमें मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें शामिल हों। अरे शहीदों
में गए सर पर कफन
बांधे हुए तुम जुलूसों में गए सर पर कफन बांधे हुए अज़्मे हुर अज़्मे हबीबो और सजा दिल में लिए इस तरह से जान की नजरे आज़ा जिंदाबाद ऐ शहीदों जिंदाबाद ऐ शहीदों
जिंदाबाद
अजर जब मैं शर में जहरा से मिलेगा देखना अजर जब मैं शर में जहरा से मिलेगा देखना हर बशर ये देख कर है रान होगा देखना शहर में लुटा के हो गए हो कामिया
मौलाए कायनात का जुमला याद है फुस्तो बेरब्बे गावा
जान लुटा के हो गए हो जाग में शहर में लुटा के हो गए पहुंचे पेशे बुतुरा फख्र से महेशर में तुम यूं पहुंचे पेशे बुतुरा देखते ही तुमको हैदर ने कहा जिंदाबाद ऐ शहीदों माँ बहनों को सलाम जान कर दी जिनके बेटों ने अजाए शह के नाम जान कर दी जिनके बेटों ने अजाए शह के नाम यूं अजा
स्लाइड देखी हो तो 23 दिसंबर को कराची की जो पेपर मार्केट है उसमें दो भाइयों को शहीद किया सैयद कमर हसन साहब और सैयद हसनैन अली साहब को लेकिन वहीं पर एक और बंदा मोमेंट محمد حسین صاحب کو بھی شہید کیا. شہید قمر اور شہید حسنین کی دو بھائی یہاں موجود ہیں، جبکہ محمد حسین کی بہن جو شو ڈیلس میں موجود ہیں، جب میری ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ آنا چاہ رہی تھیں اس پروگرام میں لیکن نامساعد حالات کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں، لیکن اس پروگرام کے ذریعے سے وہ ان دو بھائیوں ذوالفقار بھائی اور ریاض بھائی کو بھی پیغام دینا چاہ رہی تھیں اور ان سے بھی تسلیس اور پیغام تعزیت پیش کرنا چاہ رہی تھیں. میں گزارش کروں گا جناب پرویز نقوی صاحب سے کہ وہ آ کر ایک ایسے شہید کے بارے میں تذکرہ کریں. اس سے پہلے جب جو بھی یہاں پر آیا اپنے شہید کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، اس کو دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور اس کو مقابلہ کرنے کا موقع نہیں مل سکا. لیکن ایک ایسے شہید ہے کہ جس کو موقع ملا اور جس نے دشمن سے مقابلہ بھی کیا، ہماری مراد کیپٹن یاسر عباس صاحب کی ہے کہ جو پی این ایس میران میں جو حادثہ ہوا اس میں انہوں نے دشمن کو للکارا اور دشمن پر حملہ کیا، دشمن سے مقابلہ کیا. میں گزارش کروں گا پرویز نقوی صاحب سے کہ وہ آ کر اس شہید کے بارے میں، اس سے پہلے کہ میں اگلے مہمان کو بلاؤں، میں جب میں شہدا کی فہرست میں کچھ نام پڑھ رہا تھا تو وہاں پر مجھے ایک نام ڈاکٹر شبیر الحسن شہید کا ملا اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں ان کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ یہ ان کی سوچ تھی جو ہم سب کے لیے سبق ہے. قلب مومن ہو نہیں سکتا اسیر زر کبھی، قلب مومن ہو نہیں سکتا اسیر زر کبھی، کاٹ دی ہے اس طرح بوزر نے زر کی روشنی. اب میں گزارش کروں گا جناب ارشد علی صاحب جو شکاگو سے تشریف لائے، وہ اپنے شہید قمر الادتا کے بارے میں گفتگو کریں. آواز بلند سلام آباد.
حاضرین، اور سب سے پہلے تو میں اپنے ان دوستوں سے درخواست کروں گا، آپ کو خونِ حسین کا واسطہ، پلیز تشریف لائیے اور یہاں آ کے بیٹھیے اور بات سنیے. میں جذبات میں بات نہیں کروں گا اور سب سے پہلی آپ لوگوں سے پیش بھی معذرت اور معافی کا طلبگار ہوں کہ جو کچھ کہوں گا وہ شاید ایک باغیانہ سوچ ہو، لیکن اس باغیانہ سوچ کے پیچھے یہ چیز کار فرما ہے کہ اگر ہمارا دین سچا ہے تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم اس باغیانہ سوچ کو سوچیں اور قائم کریں اور اس پہ عمل کریں اس طرح سے کہ یہ شہادتوں کے سلسلے اس طرح سے نہ ہو سکے. میری بے ربط ہو رہی ہے بات. سب سے پہلے تو قمر کے بارے میں یاد کروں، میرا چھوٹا بھائی تھا، میرا آئینہ تھا، ہم اس طرح ساتھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں سینا مینا کی جوڑی کہا کرتے تھے. تو یہ بات سے مطلب یہ ہے کہ جو میرے افکار یا اس کے افکار وہ بالکل ایک جیسے ہیں. وہ کیوں شہید ہوا؟ اس لیے کہ وہ حسینیت کا مزاج سمجھ گیا، اس حسینیت پہ کاربند ہوا کہ جو ایک معاشرے کی تشکیل ہے حسینیت. حسینیت میرا جوان بھائی ابھی باتیں کر رہا تھا، بہت اچھا مجھے، بلکہ اس کے لیے اس کی صحت اور اس کی تندرستی اور اس کے ایمان کی افروزگی کے لیے ایک صلوات پڑھیے بابا. پیغام قمر کا یہی ہے اور میرا بھی یہی ہے، میں بس شہید نہیں ہوا ورنہ میں اور وہ ایک اس چیز میں وہ مجھ سے بازی لے گیا، ورنہ اس ساری سوچ میں ہم ساتھ شامل تھے. حسینیت نام ہے ایک معاشرے کا جو ہم نے قائم نہیں کیا. اگر شہید کی موت قوم کی حیات ہے، ہمیں 1400 سال پہلے وہ شہادت اور شہادت عظیم ملی ہے مگر بحیثیت قوم ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، ہم ہیں مجرم. اگر اس پوری کائنات میں اگر آپ دیکھیے وہ کون سی قوم ہے جس کو 12 استاد ملے ہوں، 12 استاد ہمارے और आप बताइए मुझे कि इस दुनिया में हमारा मुकाम क्या है जो हम दुनिया से इंसाफ मांगते फिर रहे हैं कि कब तक मारोगे, हम मरने को तैयार हैं। क्यों मरने को तैयार हो भाई? किसने कहा है मरो? किस लिए मरो? हुसैनी होने की वजह से? हुसैनी वो थे ही नहीं, वो हुसैनी हो ही नहीं सकते जो हम हैं। हम दुनिया में नाकाम तरीन लोग इस तरह से। अकायद की बात नहीं हो रही, अमल की बात हो रही है। हमने क्या किया है? ना साइंस में हमारी तरक्की, ना माशियात में हमने कुछ किया, ना हम अब कुछ कर रहे हैं। तो खुदारा आपस में बैठ तो जाइए, सोचिए तो सही कि हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ यूनिटी की ज़रूरत है, वो इल्म की ज़रूरत है जो हुसैन का इल्म है। आज़ादारी हुसैन, बस उसकी मिसाल मैं यूं दूंगा, आज़ादारी हुसैन एक कुरान की जिल्द जो होती है ना, कि कुरान के अंदर जो मैसेज है उसको संभाल के रखे। आज़ादारी इसलिए कायम की गई कि वो जो पयाम हुसैन है उसको आगे ले जाने में आसानी रहे, और हमेशा कब भी ज़िंदगी में कोई मसाइल पैदा हों तो ये आज़ादारी हमारे उस पैगाम को दोबारा वापस रिवाइव कर दे। मगर हमारा मसला ये है कि हम उस मकसद हुसैनियत को या शहादत मकसद शहादत को हमने भूल दिया। उस कुरान में अंदर जो लिखी हुई चीज़ें उन इबारात को हम कहाँ रखें? हमारे तो जिल्द खासतौर पर शिया अहले तशय्यु हमारे हैं, हम आज़ादारी के लिए जान देंगे। नहीं भाई, उस पैगाम के लिए जान दीजिए जो आज़ादारी का बायस बन रहा है, जो हुसैन की वजह शहादत थी। हुसैनियत पे मरने की बात कीजिए, हुसैन पे मरने की जरूरत नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ अगर मैं किसी को जरूरत। इसी तरह शख्सियत परस्ती की बात आ रही है, किरदार परस्ती कीजिए सरकार। ये मेरे बाबियाना ख्याल है, मैं माफी चाहता हूँ। आप यजीद से नफरत ना करें, यजीदियत से नफरत कीजिए। नमरूद से नफरत ना कीजिए, नमरूदियत से नफरत। वो बल्कि अगर हम यजीद को देख रहे थे करेक्टर में, जबकि वो यजीदियत जो है हम में भी आ जाती है। हम किरदार हुसैन को देखें तो हम हुसैन तो बन नहीं सकते, इसलिए हम हुसैनियत को भी दूर रखे हुए हैं। जबकि अगर किरदार पे अगर गौर कर लें कि हुसैन का किरदार क्या है, तो हमें वो हुसैनियत खुद आ जाएगी। तो मेरी दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि बरेली भी दुआ कीजिए कि मैं भी मारा जाऊँ इस तरह से। मेरे भाई को तशद्दुद भी किया गया, किसी ने बड़ी अच्छी बात मुझे मेरे ताज़ियत पे कही कि दुश्मन जितना शकील कल्ब है उस समझ लो कि शहीद के दर्जा में उतनी बढ़ गई। तो मैंने दुआ की, खुदाया ये कम हुआ उसके साथ, उसका अगर कीमा बना देते तो मैं और खुश होता। मेरे भाई पे तशद्दुद भी हुआ, मगर इसीलिए कि वो हुसैनियत को समझा था, वो स्कूल कायम करना चाह रहा था, वो बीमारों का इस तरह से इलाज कर रहा था। खुद वो एक हाथ मजदूर किस्म का आदमी था, कोई ज़्यादा उसके पास कर, वो पाकिस्तान से मुझे यहाँ यहाँ लोगों से कहो एक गरीब का इलाज करवाना है, और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल उसकी एक लफ्ज पे सारे मुफ्त में खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो अपने किसी रिश्तेदार के लिए नहीं जाता था, और उसमें किसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी कि शिया के लिए ही बात हो रही है। उसमें हिंदुओं का भी इलाज हुआ, उसमें सुन्नियों का भी, शियों का भी, और क्रिश्चियंस भी थे उसमें। तो ये जज्बा हमारे पास आना चाहिए कि हम मिल बैठें और अपने प्रोग्राम्स को इस तरह से डेवलप करें कि हमारे पास तालीम होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला, बल्कि दो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, और मैं इस सिलसिले में हमारे दोस्त मुनीर के साथ मुसलसल रबते में हूँ, दो चीज़ों पर तवज्जो कर दीजिए। एक, माशी हालात हमारे आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, और दूसरा अबलाग अम्मा, और फिर तालीम खुद ब खुद। ये है पहला सबक
प्रेजेंटेशन पेश कर रही हूँ, और इस प्रेजेंटेशन के बाद एक और शहीद के भाई का खिताब है, और उसके बाद ये खिताब होगा।
प्लीज से सर फॉर ऑल द मार्टर्स हू डाइड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, थैंक यू। बिस्मिल्लाह। You know, as we sit here today, and if you're like me, you have mixed emotions. You know, you have intense sadness because all the stories after stories of what you've heard, right? And if you're like me, you have intense anger towards these criminals, these animals who are out there, who are killing our people, you know. They're killing our brothers and sisters, right? But tomorrow is another day and we can move on and then we go back. The question is, what is our responsibility? And that's what we wanted to do was, please don't leave this hall today if you don't commit to doing something, right? Because if we don't do something, who else is going to do this something? So what we wanted to do was to spend just a couple of minutes, a few minutes, talking about what can we do, because it's a very good question. If you're sitting in Houston, Texas, right, what can you do from here? What can we do? You know, if you could participate in those processions and go there, we would. But we're here. We're not at risk. You know, those people who are suffering in Pakistan, they're suffering. But how are we getting impacted other than we're losing our loved ones, right? So what can we do? And Alhamdulillah, what you realize is that we can do a lot. There is so much that we can do to help our brothers and sisters, not just in Pakistan, but around the world. But we have to do a few things to prepare for that. So what's the first thing we have to do? You can change the slide. The first thing is understand the complexity of the crisis. What's going on in Pakistan has been happening, has been brewing for the last 20, 30 years. It didn't just start yesterday where somebody decided that they were going to go out and kill Shias. They didn't decide yesterday. It started 20, 30 years ago. They prepared, they put money at it, and they put a lot of resources, and that's how they are where they are. So what first thing you have to do is understand the issue. Who are these people? I mean, what kind of a mindset does it take for somebody to just go and kill somebody else without them having done anything to them? What does it take? What you will realize when you do this research is that there are thousands of people involved in this crime against Shias and Muslims in general. And maybe tens of thousands of people. What you will also realize is that there are hundreds of millions of dollars involved in this process. That's why you can kill 21,000 people. It's not easy to do that, right? But they're very organized. The message is, understand your enemy. We Shias have to understand who the enemy is. Who are these people? Who is Lashkar-e-Jangvi? Who is Sipe-Sahaba, right? Who are these people who are out there killing? It's important that you recognize that, because when you recognize them, you will realize their strength, and as a result, you will realize what we need to do. This is not an isolated event where we can send in a few dollars or thousands of dollars and help our families. No. This is going to take a very long time to fix. Brothers and sisters, please understand that this issue is long term. Maybe it will take our entire lifetime for us to solve this problem. Because that's how big it is. It's not something minor. It's not something small. So please understand the issues. Now how can you do that? There are many websites. Some of them are listed here. You can go to Pakistani websites, you can go to Shia TV. They do very good coverage and they explain in detail what's going on. It's important for you to understand that, you know. Because again, if you understand the issue, you can talk about it. You can also understand how big this problem is. Brothers and sisters, the message is not that we should be afraid of these people. That's not the idea. We should not be intimidated by them or how strong they are, how many millions they have. That's not the point. The point is we have to understand our enemies and we have to understand, you know, who they are. And that can only be done if you research and you figure out, okay, who are these people, what's going on? That's number one. One last thing, understand how the Western media...
...shagird, aur unhi ki nakshe qadam pe chalte hue, ek aur vakil, Shaheed Askari Raza sahab ne 2011 को 31 दिसंबर को शहादत हासिल की. वो अपने इसी उस्ताद के नशे कदम पे चल रहे थे जिसमें वो मासूम और बेगुनाह शिया जिनको जेलों में बंद कर दिया गया था उनकी रिहाई के लिए वो केसेस लड़ रहे थे और वो इतने कामयाब थे कि वो दुश्मन के लिए ख़तरनाक साबित हो रहे थे, इसलिए उनको शहीद कर दिया गया. सबसे आखिर में हम जनाब मुज़म्मिल रिज़वी साहब की गुफ्तगू पेश करेंगे. इसके बाद इस गुफ्तगू के बाद ये प्रोग्राम काफ़ी इख्तिताम में पहुँचेगा. आवाज़ बुलंद सलावत
अदा किया था, सच करके दिखा दिया. बाज़ उनमें वो हैं जो अपने नजराने से फारिग हो गए और बाज़ इंतज़ार कर रहे हैं और वो ज़रा भी नहीं बनते. आज मुझे मेरे भाई के बारे में कुछ कहने के बारे में कहा गया. मैं अपने भाई के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ. उनका नाम था मोहम्मद रज़ी. उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ 1979 को कराची में किया। इब्तदाई ज़िंदगी बिल्कुल एक आम आदमी के तौर पर गुजारी, जैसे कि लोग गुजारते हैं। जिस ज़माने में अहले महल्ला आवारा गर्दी और गैर तालीमी मशाग़ल में मसरूफ रहते थे, उस ज़माने में आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड का इंतखाब किया और सिर्फ 20 साल की कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का आगाज़ किया। उनकी इस फील्ड से लगन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 22 साल की उम्र में वो इंग्लैंड की एक कंपनी के लिए कंसल्टेंट की हैसियत से जॉब कर रहे हैं। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब उनके असातिज़ा जिन्होंने उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई थी, जब वो किसी जगह पे स्टक हो जाते थे तो वो मेरे भाई से रब्ता करते थे। आपका शुमार ऐसे अफराद में किया जा सकता है जिनको नाम और नमूद से दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो खामोशी से इल्मी और फिक्री कामों में मसरूफ रहते थे। इसी मकसद के लिए उन्होंने अपने घर में एक कंप्यूटर सेंटर का आगाज़ किया, जिसमें बिला तफरीक मज़हब और ज़बान वो लोगों को आईटी की तालीम दिया करते थे। मज़हब से उनकी वाबस्तगी कोई ढकी छुकी बात नहीं थी, जिसका अंदाज़ा उनके इल्मी मुबाहिसों से हो सकता है जो वो अक्सर अपने हल्का अहबाब में किया करते थे, और उन मुबाहिसों में उनका ख़ास उनवान इनकलाब इस्लामी हुआ करता था। आप एक सेल्फ मेड शख्सियत थे जो कि ज़िंदगी में अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ करने का आज़म रखते थे। खुश अखलाकी, नरम खोई और मोहब्बत आमेजी आपके किरदार का खासा था, लेकिन अफसोस उनकी ये तरक्की और मिल्लत की तरबियत का ये अंदाज़ यजीदियों को पसंद ना आया और 25 साल की जवान उम्र में 11 जनवरी 1995 को उनके घर में आकर हमारी वालदा के सामने उनको शहीद कर दिया गया। मैं भी उस वक्त उसी जगह पर मौजूद था उनके बराबर में, मगर शहादत मेरे नसीब में नहीं थी तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सवाल ये है कि आखिर कब तक पाकिस्तान में शिया नस्लकुशी जारी रहेगी, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। कब तक हमारे अकाबरीन, उलमा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और असातिज़ा लुक्मा यजल बनते रहेंगे? कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुजरमाना गफलतें और हुक्मरानों की बेहिसी कब तक जारी रहेगी? पारा पारा कर दिए तहजीब इंसान के उसूल, हर जगह अब राज करते हैं तो शैतान के उसूल। शहर में चलने लगे जंगल के हैवान के उसूल, भूल बैठे क्या सभी इस्लाम और कुरान के उसूल? ताजे चंगेजी सजाए चुप खड़े हैं रहनुमा, जाम मीना के नशे में धुत पड़े हैं रहनुमा। लेकिन हमें यकीन है कि अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है, शहदा का लहू रायगा ना जाएगा बल्कि इनकलाब आए। आखिर का एक दिन अल्लाह जालिम को जालिम से लड़वाएगा और उस दिन दुश्मनान इस्लाम और पाकिस्तान बर्बाद हो जाएंगे।
इससे पहले कि मैं अगले मेहमान को बुलाऊं, मैं जब मैं शहदा की फहरिस्त में कुछ नाम पढ़ रहा था तो वहाँ पर मुझे एक नाम डॉक्टर शबीर हसन शहीद का मिला, और उनको खराज अकीदत पेश करते हुए मैं उनका एक शेर पेश कर रहा हूँ कि ये उनकी सोच थी जो हम सब के लिए सबक है। कल्बे मोमिन हो नहीं सकता असीर जर कभी, कल्बे मोमिन हो नहीं सकता असीर जर कभी, काट दी है इस तरह बूजर ने जर की रोशनी। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब इशरत अली साहब जो शिकागो से तशरीफ लाए, वो अपने शहीद कमर अल अजिता के बारे में गुफ्तगू करें। आवाज़ बुलंद सलावात।
हाजरीन, और सबसे पहले तो मैं अपने उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा, आपको खोने हुसैन का वास्ता, प्लीज तशरीफ लाइए और यहाँ आके बैठिए और बात सुनिए। मैं जज्बात में बात नहीं करूँगा, और सबसे पहली आप लोगों से पेश भी माजरत और माफ़ी का दरकार हूँ कि जो कुछ कहूँगा वो शायद एक बागियाना सोच हो, लेकिन उस बागियाना सोच के पीछे ये चीज़ कारफरमा है कि अगर हमारा दीन सच्चा है तो हमें कोई खौफ नहीं है कि हम इस बागियाना सोच को सोचें और कायम करें और उस पर अमल करें इस तरह से कि ये शहादतों के सिलसिले इस तरह से ना हो सके। मेरी बेरब्त हो रही है बात। सबसे पहले तो कमर के बारे में बात करूं, मेरा छोटा भाई था, मेरा आईना था, हम इस तरह साथ रहे हैं कि लोग हमें सेना मैना की जोड़ी कहा करते थे। तो ये बात से मतलब ये है कि जो मेरे अफकार या उसके अफकार वो बिल्कुल एक जैसे हैं। वो क्यों शहीद हुआ? इसलिए कि वो हुसैनियत का मिजाज समझ गया, उस हुसैनियत पे कारबंद हुआ कि जो एक माशरे की तश्कील है हुसैनियत। हुसैनियत मेरा जवान भाई अभी बातें कर रहा था, बहुत अच्छा मुझे, बल्कि उसके लिए उसकी सेहत और उसकी तंदुरुस्ती और उसके ईमान की फरोजगी के लिए एक सलवात पढ़िए बाबा। पैगाम कमर का यही है और मेरा भी यही है। मैं बस शहीद नहीं हुआ, वरना मैं और वो एक इस चीज़ में वो मुझसे बाजी ले गया, वरना इस सारी सोच में हम साथ शामिल थे। हुसैनियत नाम है एक माशरे का जो हमने कायम नहीं किया। अगर शहीद की मौत कौम की हयात है, हमें 1400 साल पहले वो शहादत और शहादत अजीम मिली है, मगर बहैसियत कौम हमने उसको कबूल नहीं किया। हम हैं मुजरिम। अगर इस पूरी कायनात में अगर आप देखिए, वो कौन सी कौम है जिसको 12 उस्ताद मिले हों, 12 उस्ताद हमारे, और आप बताइए मुझे कि इस दुनिया में हमारा मुकाम क्या है जो हम दुनिया से इंसाफ मांगते फिर रहे हैं कि कब तक मारोगे, हम मरने को तैयार हैं। क्यों मरने को तैयार हो भाई? किसने कहा है मरो? किस लिए मरो? हुसैनी होने की वजह से? हुसैनी वो थे ही नहीं, वो हुसैनी हो ही नहीं सकते जो हम हैं। हम दुनिया में नाकाम तरीन लोग इस तरह से। अकायद की बात नहीं हो रही, अमल की बात हो रही है। हमने क्या किया है? ना साइंस में हमारी तरक्की, ना माशियात में हमने कुछ किया, ना हम अब कुछ कर रहे हैं। तो खुदारा आपस में बैठ तो जाइए, सोचिए तो सही कि हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ यूनिटी की जरूरत है, वो इल्म की जरूरत है जो हुसैन का इल्म है। आजादारी हुसैन, बस उसकी मिसाल मैं यूं दूंगा, आजादारी हुसैन एक कुरान की जिल्द जो होती है ना, कि कुरान के अंदर जो मैसेज है उसको संभाल के रखे। आजादारी इसलिए कायम की गई कि वो जो पयाम है हुसैन है उसको आगे ले जाने में आसानी रहे, और हमेशा कभी जिंदगी में कोई मसाइल पैदा हो तो ये आजादारी हमारे उस पैगाम को दोबारा वापस रिवाइव कर दे। मगर हमारा मसला ये है कि हम उस मकसद हुसैनियत को या शहादत मकसद शहादत को हमने भूल दिया। उस कुरान में अंदर जो लिखी हुई चीज़ें उन इबारात को हम कहाँ रखें? हमारे तो जिल्द खासतौर पर शिया अहल तशरीक हमारे, हम आज़ादारी के लिए जान देंगे। नहीं भाई, उस पैगाम के लिए जान दीजिए जो आज़ादारी का बायस बन रहा है, जो हुसैन की वजह शहादत थी। हुसैनियत पे मरने की बात कीजिए, हुसैन पे मरने की जरूरत नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ अगर मैं किसी को। इसी तरह शख्सियत परस्ती की बात आ रही है, किरदार परस्ती कीजिए सरकार। ये मेरे बाबियाना ख्याल है, मैं माफी चाहता हूँ। आप यजीद से नफरत ना करें, यजीदियत से नफरत कीजिए। नमरूद से नफरत ना कीजिए, नमरूदियत से नफरत। वो बल्कि अगर हम यजीद को देख रहे थे कैरेक्टर में, जबकि वो यजीदियत जो है हम में भी आ जाती है। हम किरदार हुसैन को ले जाएं तो हम हुसैन तो बन नहीं सकते, इसलिए हम हुसैनियत को भी दूर रखे हुए हैं। जबकि अगर किरदार पे अगर गौर करने के हुसैन का किरदार क्या है, तो हमें वो हुसैनियत खुद आ जाएगी। तो मेरी दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं भी मारा जाऊँ इस तरह से। मेरे भाई को तशद्दुद भी किया गया, किसी ने बड़ी अच्छी बात मुझे मेरे ताज़ियत पे कही कि दुश्मन जितना शकील कल्ब है, उस समझ लो कि शहीद के दर्जात में उतनी बुलंद है। तो मैंने दुआ की, खुदाया ये कम दुआ उसके साथ उसका अगर कीमा बना देते तो मैं और खुश होता। मेरे भाई ने तशद्दुद भी हुआ, मगर इसीलिए कि वो हुसैनियत को समझ रहा था, वो स्कूल कायम करना चाह रहा था, वो बीमारों का इस तरह से इलाज कर रहा था। खुद वो एक हाथ मजदूर किस्म का आदमी था, कोई ज़्यादा उसके पास कर, वो पाकिस्तान से मुझे यहाँ यहाँ लोगों से कहो एक गरीब का इलाज करवाना है, और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल उसकी एक लफ्ज पे सारे मुल्क में खड़े हो जाए, क्योंकि वो अपने किसी रिश्तेदार के लिए नहीं जाता था और उसमें किसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी कि शिया के लिए ही बात हो रही है, उसमें हिंदुओं का भी इलाज हुआ, उसमें सुन्नियों का भी, शियों का भी, और क्रिश्चियंस भी थे उसमें। तो ये जज्बा हमारे पास आना चाहिए कि हम मिल बैठें और अपने प्रोग्राम्स को इस तरह से डेवलप करें कि हमारे पास तालीम होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला, बल्कि दो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, और मैं इस सिलसिले में हमारे दोस्त मुनीर के साथ मुसलसल रबते में हूँ, दो चीज़ों पर तवज्जो कर दीजिए। एक, माशी हालात हमारे आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, और दूसरा अबलावे आमा, और फिर तालीम खुद ब खुद। ये है पहला सबक। जला गला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने शायद टाइम ज़्यादा दे दिया।
पेश करना चाहती हूँ, और इस प्रेजेंटेशन के बाद एक और शहीद के भाई का खिताब है, और उसके बाद खिताब होगा।